महाराज जी ने समता विलास में इन पांचों विकारों की बड़ी डिटेल्स दी हैं। जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य की जो देह है ये पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और पृथ्वी और ब्रह्मांड भी इन्हीं पांच तत्वों का बना हुआ है। तो हर तत्व जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका कुछ गुण होता है। तो इन पांच तत्वों के जो पांच विकार हैं या पांच गुण हैं, उन्हीं को हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। लेकिन महाजी कह रहे हैं कि किसी किसी व्यक्ति में, या यूं कहिए कि हर व्यक्ति में एक विकार प्रबल होता है जो अन्य विकारों पर छाया होता है। जैसे किसी के अंदर क्रोध प्रबल है तो सारी जिंदगी वो क्रोध में खुद भी जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। कितनी भी कोशिश कर ले वो विकार उसका डोमिनेट करता ही है, प्रबल रहता है। कम तो कर सकता है लेकिन फिर भी वो बाकी के मुकाबले में वो प्रबल होगा उसके अंदर। इसी प्रकार किसी के अंदर लोभ प्रबल होता है। तो लोभ जब प्रबल होता है तो व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाएगा, पैसे का पीर होगा, वो वस्तुएं ज्यादा इकट्ठी करेगा, प्रॉपर्टी ज्यादा बनाएगा। तो इस प्रकार से वो सारा जो है संपत्ति है, धन है, ये एकत्र करेगा वो। और वो सोचता है कि मैं एक दिन सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन उसको इस विज्ञान का पता नहीं है कि ये विकार है। विकार यदि सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो विकार बढ़ जाता है। जितना आप पैसा कमाएंगे, जितना आप वस्तुएं इकट्ठी करेंगे, जितना उनका भोग विलास करेंगे, जितनी संपत्ति आप इकट्ठी करेंगे, ये विकार आपके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए लोभ भी आदमी सोचता है कि पैसा मैं कमाऊंगा, एक लिमिट आएगी जहां मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन यदि ऐसा होता तो आप देखते हैं कि दुनिया में कितने कितने बड़े देश हैं, उनका लोभ आज तक खत्म नहीं हुआ। यदि हम देश की बात करें तो जो देश जितना आगे बढ़ रहा है वो सारी दुनिया का एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है कि हर देश मुझसे खरीदे, समझे नहीं, मेरी माने और मैं सबसे अमीर देश बन जाऊं। वो दौड़ में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, सारी जिंदगी उसकी दौड़ लगती रहती है। और अंत में क्या होता है, वो दौड़ उसके मानसिक संतुलन को ही बिगाड़ देती है। हिटलर का जमाना देखो, पैसा कम था उसके पास, क्या दुनिया में सबसे ज्यादा शस्त्र हिटलर ने ही तैयार किए थे, बिना पैसे कैसे तैयार करता वो। तो पैसा इकट्ठा किया, शक्ति अर्जित की, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसका नतीजा क्या निकला, विश्व युद्ध हो गया। तो इसलिए लोभ वृत्ति व्यक्ति की यदि बढ़ेगी तो उसका सर्वनाश करेगी, ये इंसान को नहीं पता है। इसीलिए जो ऋषि लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक्स दूसरी तरीके से है। अब देखो संतवाणी क्या कह रही है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये इकोनॉमिक्स है। और संतवाणी क्या कह रही है, दो हाथ उलीचिए घर में बाढ़ है दाम। घर में यदि पैसा बढ़ जाए किसी भी कारण से, हो सकता है प्रारब्ध वर्ष ही बढ़ जाए, जन्म से ही आपको बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा पैसा मिल जाए, तो यदि इसको भोगा आपने तो गए काम से आप। यदि इसको भाग्य समझा कि बड़ा पैसा भगवान ने दिया है, अब खूब भोग विलास करो, तो आपने अपना सर्वनाश कर लिया। ये भाग्य हुआ या दुर्भाग्य हुआ आपका? क्योंकि वाणी तो स्पष्ट कह रही ना कि पांच विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, सारा संसार इसमें जल रहा है और ये महादुखदाई है। तो संसार की संपत्ति अर्जित करके लोभ बढ़ा के इन पांच विकार को तो बढ़ाओगे और क्या करोगे आप उसका? और शांत कैसे होंगे? परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। जीव इन विकारों से छुटकारा पा ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर परमार्थ की प्रतीति ना हो, ईश्वर की तरफ चलने की लगन ना हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि संसार की जो समझ है और संसार की जो करनी है वो तो अंधकार की करनी है। यदि सत्पुरुष का ज्ञान उसके आगे नहीं है, उसका विज्ञान उसके आगे नहीं है, उसको नहीं पता उस बातों का, तो उसे अपने सर्वनाशी करना है। यही कारण है कि जो देश भी राइज करता है, पूरा विश्व का इतिहास उठा के देख लो, एक समय यूनान कहां था, एक समय भारत कहां था, भारत भी सोने की चुड़िया कहलाता था, एक समय इंग्लैंड कहां था, उसका पूरी दुनिया में सूर्यास्त नहीं होता था, हर जगह राज किया उसने, कहां मटिया मेट हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया। हिंदुस्तान से भी हमारे कारण नहीं छोड़ना पड़ा हिंदुस्तान उसको, वो अपनी बर्बादी के कारण उसको छोड़ना पड़ा कि अपना देश संभालें या दूसरे देश संभालें। जर्मनी का दिमाग खराब हुआ, उसके पास संपत्ति बढ़ी, उसके पास उसका लोभ बढ़ा, तो सारी दुनिया पर राज्य करने की सोच ली, इसीलिए विशुद्ध हुआ। तो क्या हुआ? जर्मनी के दो टुकड़े हो गए। तो जिस देश ने भी सिर उठाया, उसकी उसका लोभ बढ़ा, सर्वनाश हो गया। इराक का भी यही हाल हुआ, इराक के पास तेल की कमी तो नहीं थी, लेकिन उसने कुवैत पर निगाह चलानी शुरू कर दी। छोटा सा देश है, पड़ोस में है, दबा लूंगा, इसका तेल भी मेरा हो जाएगा। क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। तो सारी दुनिया इस लोभ के चक्कर में घोर स्वार्थी हो जाती है। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है तो दूसरे का दर्द, दूसरे की तकलीफ दिखाई नहीं पड़ती है। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसको यह भी ख्याल नहीं होता मेरी इच्छा उचित है या अनुचित है। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस एकमात्र उसकी छटपटाहट है, इसके लिए बेचैन भी है वो, इसके लिए सुसाइड भी कर लेगा वो। ऐसी ऐसी इच्छा होती है, आदमी सुसाइड कर लेता है, जिंदगी का कोई होश ही नहीं। तो इसीलिए ये वाणी कितना सत्य बोल रही है, इसके लिए संसारी कोई सोचने को तैयार है? यदि संसारी कोई सोचने को तैयार है, केवल वही सोचता है जिसने उस गुरु पर फेथ किया है। जिसकी श्रद्धा गुरु पर आई है, तभी उसकी वाणी को, उसके वचन को वो विचार करने की कोशिश करता है। जब विचार करता है तब कहता है कि अरे ये तो संसार से बिल्कुल उलट बातें हैं। लेकिन गुरु पर फेथ है, उसे मालूम है गुरु स्वार्थी नहीं है, संसार तो फिर भी स्वार्थी, माता पिता भी स्वार्थी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना बच्चों के द्वारा पूरी करते हैं। पिता आपका डॉक्टर हो तो कहेगा मैं बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, भले उसकी वृत्ति उधर चलने की ना हो। हो सकता है उसका उसका म्यूजिक का शौक हो, म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पिता उसको डॉक्टर बनाएगा, उसके सारा मानसिक क्लेश पैदा कर देगा उसके अंदर। तो माता पिता भी अपनी डिजायर ही बच्चों पर थोपते हैं। उनका कैलिबर क्या है, उनके संस्कार कैसे हैं, क्या लेके आए हैं वो, किधर रुझान है उनका, उसको देखने की कोशिश नहीं करते। ज्यादातर माता पिता ऐसे होते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो अब बताइए कि पूरा संसार जिसका कोई गुरु नहीं है, गुरु नहीं है तो अध्यात्म कोई नहीं, किससे सीखेगा? मान लिया कृष्ण पर ही श्रद्धा है किसी की, कृष्ण को ही गुरु समझ रहा है यदि वो, तो गीता सीखे फिर वो? कृष्ण का संदेश तो समझ नहीं, गीता में है, वहां पढ़ेगा तो साफ साफ वहां लिखा हुआ है। अर्जुन पूछता है कृष्ण से, वासुदेव मनुष्य को पाप करने के लिए कौन प्रेरित करता है, मनुष्य पाप क्यों करता है? अब कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य की इच्छा ही, मनुष्य की वासना ही उसको पाप करने के लिए प्रेरित करती है। अब बताइए, सारे मनुष्य पाप अपनी इच्छाओं के, अपनी वासना के वशीभूत होकर करता है, तो ये वासना दुख का कारण है या सुख का कारण है? विचार करके तो देखो जरा, जो आपके अंदर पाप वृत्ति पैदा कर रही है वो सुख का कारण हो सकती है या दुख का कारण हो सकती है। सुख का कारण होगी तो ऐसे ही होगी, जैसे चोर चोरी कर लेता है बड़ा सुखी होता है, कहता है वाह आज तो मेरी लॉटरी खुल गई, चोरी कर ली। लेकिन संसार क्या कहता है, कहता है ये तो बड़ा शैतान आदमी है, ये तो समाज में रखने लायक ही नहीं। समाज भी चाहता है कि घोर स्वार्थी जो है, जिसको अपना अधिकार पता नहीं है, दूसरे का अधिकार पता नहीं है, दूसरे के अधिकार पर डांका डालता है, तो समाज भी उसको रखना नहीं चाहता। वो कहता है तो इसके अंदर जो है पशु प्रवृत्ति है। शिकारी क्या करता है, पशु जो शिकारी होता है वो क्या करता है, दूसरे के जीवन पर डांका डालता है, उसको मार के खा जाता है। तो मनुष्य भी यदि दूसरे के अधिकार पर अनधिकार चेष्टा करके उसकी चीज हड़प ले तो समाज में रहने लायक है वो क्या, वो इसलिए समाज उसको या जेल में डाल देता है या उसको सजा देता है। लेकिन समाज क्या ये सोचने को तैयार है कि ये पापी बना क्यों। उसके लिए गीता गाइड कर रही है कि मनुष्य की कामना ही मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर करती है। तो मैं मनुष्य हूं और सारा समाज चाहता है कि मनुष्य पापी नहीं होना चाहिए, चाहता सारा समाज है। एक चोर भी चाहेगा कि मैं चोर रहूं लेकिन और कोई चोर ना बने, ताकि मेरा घर सुरक्षित रहे, मेरे घर चोरी ना हो। कोई चोर चाहेगा दूसरे चोर बन जाए, कभी नहीं चाहेगा। इसका मतलब हर व्यक्ति अंदर से समझता है लेकिन उसका कोई गुरु नहीं, उसका कोई मार्गदर्शक नहीं, इसलिए कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता। इसीलिए वाणी कह रही है कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। जो गीता कह रही है वो वाणी भी कह रही है, क्योंकि स्रोत एक ही है। इन दोनों का आगमन, ये ज्ञान जहां से आ रहा है वो स्रोत एक ही है। तो इसीलिए तो अब बताइए मुझे, कामना है ये पांच विकार की क्या है, ये कामना है। और जीव जले दिन रात, मैं इसमें दिन और रात बेचैन हो रहा हूं। जलने का मतलब यहां पर बेचैनी, मेरी बेचैनी बढ़ रही है जैसे जैसे इन विकारों की कमाई कर रहा हूं। तो संसार का भोगवाद, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म जैसे जैसे बढ़ेगा ये, वैसे वैसे ये पांच विकार संसार में बढ़ेंगे। तो देशों में विशुद्ध होगा या चैन से रहेंगे। तो इसीलिए जो मनुष्य के जीने का रास्ता है वो सादगी से होकर जाता है, मर्यादा से होकर जाता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भारत में बीज डाला, उनकी अप्रोच यही थी कि हर व्यक्ति के पास रहने को जगह होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास खाने को रोटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के पास जो है पहनने को कपड़ा होना चाहिए, रोग के लिए उसके पास मेडिसिन होनी चाहिए। तो मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, शिक्षा होनी चाहिए, तो उस पर तो ध्यान हमारा ऐसा नहीं है नहीं गया है, लेकिन उस पर लापरवाही है। ये तो इतने वर्ष हो गए भारत को और कितना पैसा है भारत के पास। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं हम, 100 स्मार्ट सिटी भारत में खड़े करेंगे, लेकिन जो आखिरी छोर पे आदमी बैठा हुआ है उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। पहला लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि इनको जब ये बेसिक अवस्थाएं मिल जाएंगी उस दिन हम अपने स्मार्ट सिटी की सोचेंगे। क्या अधिकार है कि एक तो आप चमक धमक में जी रहा है, एक बेचारे के पास गांव के चलने के लिए सड़क तक नहीं है, उसके पास शौचालय तक नहीं है, उसके पास स्कूल तक नहीं है, उसके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी ठीक तरह से नहीं मिलती, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये ऋषियों का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। तो इसका मतलब हम जो ठीक निर्णय नहीं ले पाते, हम कहीं ना कहीं पांच विकार से ग्रस्त हैं, सारे नेता और सारे समाज के लोग। और जिनको होश है इस बात का उनकी संख्या ना के बराबर है, बहुत कम है, हो सकता है 0.1% हो। जिनको इस बात का होश है उनकी संख्या 0.1% हो, उनकी कौन सुनेगा, और उन्हीं की सुनेगा कब, जबकि वो किसी पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाए। लेकिन उसके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे होंगे कि उनका हुक्म ही लोग नहीं मानेंगे, उनके भ्रष्टाचार को वो कैसे रोकेगा, किस किस को सजा देगा वो। इसलिए ईमानदार आदमी देखा होगा कहीं यदि कुर्सी पे है भी तो उसकी ज़्यादा चल नहीं पाती, जितनी उसकी इंडिविजुअल पावर होती है कर लेता है काम। तो इसलिए जितना भी फैलाव है आज ना विचार करके देखो, जिसको हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसको विकास कर रहे हैं, जिसको हम शिक्षा कर रहे हैं, ये मनुष्य को अपने ही बारे में सोचने के लिए गफलत में डाल रही है। अपने लिए सोचने का मतलब होता है सही सोचना, जिससे मेरा भविष्य में कल्याण हो, जिससे मुझको भविष्य में चैन मिले, संतोष मिले। लेकिन ये जो एजुकेशन है और ये जो जीवन है जो हम समाज से सीख रहे हैं या सोसाइटी से क्या सारी दुनिया से सीख रहे हैं, तो ये तो गर्त में ले जाने वाला है। गीता में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि रजसाह तू फलम दुखम, रजोगुण का परिणाम दुख है, इसी भोगवाद का नाम रजोगुण है। जिस परिवार का लक्ष्य यह है कि खूब पैसा कमाओ, खूब बच्चों को एजुकेट करो और अच्छे से अच्छे अच्छे पद पर, अच्छे से अच्छे व्यवसाय में बच्चों को पहुंचा दो, तो जीवन सफल हो जाएगा। माता पिता को होश नहीं, ये जिंदगी के बर्बादी के लक्षण हैं। लेकिन कौन माता पिता सोचेगा इस बारे में? जिसने बच्चों को ये राह दिखाई है कि बेटा खूब हाईएस्ट एजुकेशन लेना और पैसा कमाने के लिए अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना और खूब बेटा खूब पैसा कमाना, तो उसने तो डूबी जाना है, दुनिया को कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। जिस माता पिता ने ये शिक्षा बच्चे को दी है और इसी में उनका निश्चय बना हुआ है अपना भी, माता पिता का, तो उसने अपने खुद भी डूबना है और बच्चों ने भी डूबना है। इसीलिए जो संसार में आज ये जो दौड़ चल रही है, इसने माता पिता को कहाँ पहुंचा दिया। अब बूढ़े माता पिता की घर में जगह नहीं है। माता पिता की करनी उनके आगे आ रही है कि भोगवाद का नतीजा यही होता है। उनको ये पता नहीं है भोगवाद स्वार्थी बनाता है व्यक्ति को। भोग जब ज्यादा भोगोगे, कमाई ज्यादा करोगे, तो बाकी तो टाइम ही नहीं है आपके पास, इसी में सारा टाइम बीत जाएगा, अंधबुद्धि आपकी बन जाएगी। तो इसीलिए आप देखिए जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके भोगों के साधन नए नए डेवलप हो रहे हैं, जैसी जैसी साइंस की रिसर्च बढ़ रही है, उसके हिसाब से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उसके प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, तो संसार के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है, मनुष्य के अंदर चालाकी बढ़ रही है या घट रही है, घर वालों के प्रति ही प्रेम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, विचार करके देखो, हर एंगल से आप विचार करके देखो, ईश्वर का भय उनके अंदर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। जहां से जिंदगी बननी है उन शास्त्रों के अध्ययन के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है या घट रहा है, जरा विचार करके देखो। तो कहां से आपके अच्छे दिन आएंगे, कहां से आपके अच्छे दिन आएंगे? अब आप संत अवराज में पढ़कर देख लो, माइन का जब ये स्वार्थ बढ़ता है, ये भोगवाद बढ़ता है, ये रजोगुण बढ़ता है, तो एक दिन ऐसा आ जाता है समाज में कि एक दूसरे का हक हासिल करने की खातिर, अर्थात आपके अधिकार को मैं छीन रहा हूं, एक दूसरे का हक हासिल करने की खातिर लोग आपस में ही कट कट के मर जाते हैं। ये आपका भविष्य है, आपके समाज का, आपकी दुनिया का। तो क्या आशा लेके जीरो संसार के अंदर, ये दिन आने वाले हैं आपके। गुरु नानक ने भी जब काबुल के धुर से इधर पाकिस्तान से होते हुए, इधर वो सिंध से होते हुए काबुल की तरफ जा रहे थे, तो देख रहे थे कि ये पंजाब के अंदर कितना फैशन है उस समय। आज तो खैर नए तरीके का फैशन हो गया, लेकिन उस समय भी भोगवाद था। तब गुरु नानक ने चेतावनी दी थी उन लोगों को, यहां से चले जाओ। जिसने सुन ली उनकी, ये संत हैं, इनके पीछे कोई राज होगा, वो जगह छोड़ के चले गए। जो नहीं गए, उधर से आक्रमण हुआ, कौन था, हुमायूं था, कौन था उस समय, बाबर, बाबर सारा कत्लेआम करके खत्म हो गया। जब नानक लौट के आए तो जो भविष्यवाणी की थी वो सामने थी कि जहां भी फैशन परस्ती होगी, जहां भी भोगवाद होगा, वहां कत्लेआम होना ही होना है, क्योंकि बस माया के पीछे तो चोर भी पड़ जाते हैं, डकैती पड़ जाते हैं, नहीं दूसरे देशों की भी नजर हो जाती है, और ना भी हो तो आपके लोगों की ही आपके नजर ऐसी हो जाएगी कि आप खुल लूट के ले जाएंगे। बाहर से आक्रमण तो कभी कभी होता है, लेकिन देश के अंदर तो आक्रमण होते ही रहते हैं पैसे वालों के ऊपर। तो इसका मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं और हमने जो जिंदगी के लक्ष्य निर्धारित किए हैं समाज को देखकर, ये तो अंधी दौड़ है, तो होश किसी को है ही नहीं, ना संतान को होश है, ना माता पिता को होश है, ना राजनेता को होश है, ना सरकार को होश है, होश कहाँ है। तो इसीलिए यदि गुरु के अनुसार मैंने नहीं सोचा, समझे, तो फिर मैं रजोगुण से मुक्त नहीं हो सकता। और महाराज जी ने समता व्यास में स्पष्ट लिखा है, रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है, अर्थात बुद्धि में अंधेरा छा जाता है, निर्णय शक्ति क्षीण हो जाती है। निर्णय वो सारे संसारी तरीके से करता है, आध्यात्मिक तरीके से निर्णय नहीं करता, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार निर्णय नहीं करता, वो सोची इस अंदर से गायब हो जाती है। तो रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है और तमोगुण सर्वनाश का कारण है। इसीलिए जब संसार में रजोगुण बढ़ता है, जब जब बढ़ा है, तो युद्ध हुए ही है, युद्ध होंगे ही। महाभारत काल में क्या भोगवाद कम था? कम था भोगवाद भाई। जो आपका दुर्योधन है, ये भोगवाद का प्रतीक ही तो है, वो भोगवाद का प्रतीक है दुर्योधन भाई। हम चाहे सारे विश्व को देख लें, चाहे एक राजघराने को देख लें, अंतर वहां कुछ भी नहीं है। पांडव सब कुछ त्याग करने को तैयार है, इतना त्याग करने को तैयार है कि कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन के पास जाके, इनको केवल 5 गांव दे दे तू, उसमें गुजारा कर लेंगे। वो भी राजघराने के, उसी घराने के लोग हैं। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी दुर्योधन की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें खुद भी मारा गया, सारा सर्वनाश हो गया। तो कहने को तो ये एक इतिहास है, लेकिन इसके पीछे चक्र तो प्रकृति का ही है ना, कि जिसने भोगों की तरफ नजर उठा के देखा कि मैं ये बढ़ा लूं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो ही जानी है, कोई रुक नहीं सकती। तो कृष्ण का काल था ना, वो उस घराने में कृष्ण की रिश्तेदारी थी, तो कृष्ण की क्यों नहीं चली, जबकि कृष्ण के आगे वही दुर्योधन मदद मांगने गया था और कृष्ण ने उसकी मदद की थी। लेकिन ज्ञान किसको मिला? ज्ञान अर्जुन को मिला, क्योंकि उसके अंदर त्याग था, उसके अंदर भोगवाद नहीं था, उसके अंदर सादगी थी, उसकी बुद्धि होश में थी। तो कृष्ण का ज्ञान तो अर्जुन को मिला और बाण दुर्योधन को मिले, सर्वनाश दुर्योधन को मिला। तो इसीलिए प्रभु जो है धरती पर अवतार लेते हैं गुरु रूप में, ऋषि रूप में, फिर वही बात वो रिपीट करते हैं। वैदिक काल से इसके अलावा क्या रिपीट हो रहा है? ये 5 विकार आज तो महाराज जी ने नहीं लिखे, ये तो जब से धरती बनी है तब से 5 विकार है। पूरी प्रकृति का चक्र ही 5 विकार के अंदर चल रहा है। जितने पशु पक्षी हैं इनके अंदर ये विकार आपको दिखाई पड़ते नहीं पड़ते? किसी में क्रोध हिंसा बड़ी प्रबल होती है। शेर क्या है? हिंसा का प्रतीक है। किसी में लोभ बड़ा प्रबल होता है, जोड़ते रहता है, कुछ पशु पक्षी ऐसे मिलेंगे सारा जिंदगी इकट्ठे करते रहेंगे। किसी में काम बड़ा प्रबल होता है। आप कभी डिस्कवरी चैनल देखो टीवी पर, तो एक एक मेल के पास जो है हजारों फीमेल होते हैं। काम बड़ा प्रबल है, मतलब प्रकृति की रचना है वो तो। लेकिन एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं नेचुरल लाइफ में भी। तो इसीलिए ये पांच विकार जो पॉइजन है, जहर है, उस जहर की मैं पूरी जिंदगी खर्च करके, अपनी पूरी आयु खर्च करके उसकी कमाई कर रहा हूं। तो अब बताइए, ऐसे माता पिता जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं इस पांच विकार को बढ़ाने की अनजाने में ही, तो ये बच्चों की बर्बादी का प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चों का जीवन सफल करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये बुद्धि आपको कहीं समाज में दिखाई पड़ती है? कोई इस बात, इसकी बात करता है? कोई किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में इसकी एजुकेशन दी जाती है ही नहीं कहीं। तो इसकी एजुकेशन केवल गुरु के पास है, केवल शास्त्रों में है। जो उनको इस दृष्टि से पढ़ता है कि मैंने अपनी जिंदगी सुकारत लगानी है, संसार में जिंदगी की बर्बादी है, बेचैनी है, अशांति है, यहां शांति नहीं है, जिसका निर्णय यह है, इस निर्णय के साथ जो शास्त्रों को पकड़ता है वहां खोज करता है शांति कैसे मिलेगी, उसको ये सारा विज्ञान फिर समझ में आने लगता है। और आज के वक्त में देखो, प्रभु कृपा ही तो है, ये महाराज जी की रचना नहीं है। महाराज जी तो साफ कह रहे हैं कि ये इनकी रचना नहीं है, ये तो प्रभु का बड़ा सख्त हुक्म है, ये वाणी आ रही, ये विचार आ रहे हैं। तो प्रभु का सख्त हुक्म है वो तो गीता में भी डिक्लेयर कर दिया, वहां भी कह रहे हैं अजो अपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। तो प्रभु कह रहे हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, देखो प्रभु खुद ही कह रहे हैं गीता में, मैं अजन्मा हूं, कृष्ण की देह ईश्वर नहीं है, नहीं तो कृष्ण ये बात क्यों कहते? यदि कृष्ण ईश्वर हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, जो अपि सन अव्यात्मा, मैं अविनाशी हूं, जो अजन्मा है तो अविनाशी जरूर होगा, जन्म इसका होगा उसकी मौत भी होगी, इसका जन्म नहीं है तो अविनाशी तो होगा ही होगा। अजो अपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन, सारे प्राणियों का ईश्वर हूं, सारे प्राणियों का मालिक हूं, क्योंकि इस जिस्म के, महाजी कहते हैं इस जिस्म के अंदर जो जान है उसी का नाम ईश्वर है, तो बिना जान के तो देह बेकार निरर्थक है, तो वो तो मालिक है ही, ईश्वर तो इस देह का मालिक है ही। फिर कहते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तो जो सत्पुरुष की देह है वो ईश्वर की योग माया है। क्यों है योग माया? क्योंकि उस देह के द्वारा जो ईश्वर आपको गाइड कर रहा है वो देह रूपी माया के बंधन में नहीं है, हम बंधन में, इसलिए वो उसकी योग माया है। वो देह से अलग है, देह के में रहते हुए भी वो देह से तीन काल अलग है, इसलिए पांच विकार उसको प्रभावित नहीं करते। पांच विकार देह में है, पांच तत्व की देह है, वो मुक्त है उससे। तो इसलिए ऐसा ईश्वर जो देह में मौजूद भी है, पांच विकार से मुक्त भी है, तो वो हमको क्या संदेश देगा? हम तो दुखी हैं और वो आनंद में मग्न है। किसी ऋषि को किसी ने देखा दुखी? महाजी को किसी ने देखा दुखी? प्रेमी बैठे होते थे चारों तरफ, जब समाधि से आंख उनकी खुलती थी तो कहते प्रेमी कोई विचार करो, पांच मिनट भी कोई प्रेमी नहीं बोला तो फिर समाधि में चले जाते। संसार की आसक्ति थी कहीं लेश मात्र भी, समाधि उनकी नेचुरल स्थिति थी। और समाधि का मतलब इतना आनंद कि इस प्रिय देह और प्रिय संसार का उसको होश ही नहीं रहता। तो विचार करो जरा, विचार करो जरा कि किस हालत में वो सब कुछ होता होगा, ये विचार करो। इसलिए गुरु को देखकर या अवतार को देखकर आपको पता लगता है कि गीता गलत नहीं कह रही है। और प्रभु आते हैं अवतार लेकर, ये भाई कहाँ से सीखेंगे, वहीं से तो सीखेंगे हम, वहीं से तो सीखेंगे हम कि मैं तो मालिक नहीं हूं देह का। अरे मैं मालिक होता तो जब तक चाहे जीऊं, मैं तो जी नहीं सकता अपनी इच्छा से, तो कहां मालिक हुआ मैं? पैसे का मालिक हूं, पैसा जहां चाहूं खर्च कर सकता हूं, देह का मालिक कहां हूं मैं? तो पराधीन हूं। तो देह ईश्वर शक्ति के अधीन है, तो विचार करो जरा कि जिसके कारण आपका ये मानव जीवन है उसके बारे में तो आप सोचते ही कभी नहीं। दुनिया और पैसे के बारे में सोचते हो, पांच विकार के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन ईश्वर के बारे में कहाँ सोचते हो? ईश्वर के बारे में सोचते भी हो तो तभी सोचते हो जब काम बिगड़ जाए कोई, हे प्रभु मेरी अकल से मेरे साधन से तो ठीक होगा नहीं, प्रभु तू कृपा कर दे, फिर किसी तरह मेरा काम ठीक कर दे। जब तू लाचार अपने आप को देखता है तब ईश्वर की याद करता है, तो वो तो स्वार्थ के लिए याद कर रहा है, परमार्थ के लिए कहाँ याद कर रहा है? तो ईश्वर की याद इन पांच विकार के बंधन से मुक्त होने के लिए। तो अब बताइए, जब अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि भाई कौन पाप के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी वासना ही, उसकी इच्छा ही उसको पाप के लिए प्रेरित करती है। तो इसका मतलब हो गया कि मनुष्य ने इस इच्छा रूपी शत्रु से मुक्ति पानी, तब पाप से यह मुक्त हो सकता है, क्योंकि पूरा जीवन इसका पांच विकार से युक्त है और हर करनी इसकी पांच विकार के अंदर ही सीमित है, हर करनी ईश्वर के रास्ते को छोड़कर, अध्यात्म के रास्ते को छोड़कर, क्योंकि वो पांच विकार से मुक्त करता है धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हो, इसीलिए उसको शांति का मार्ग कहा जाता है, आनंद का मार्ग कहा जाता है। इसीलिए विचार हमने यही करना है, सीखना हमने यही है कि संसार में कितने भी हम चतुर बन जाएं या कितने भी होशियार बन जाएं लोगों की निगाह में, लेकिन जैसे जैसे मेरा भोगवाद बढ़ता है, मेरा मेटेरियलिज्म बढ़ता है, मेरे अंदर संसार को भोगने की वासना बढ़ती है, वैसे ही वैसे मेरा चारित्रिक पतन होता चला जाता है। इसीलिए जिस देश में पैसा बढ़ेगा उसका चारित्रिक पतन होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए हर देश जो क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा भोगवाद की, वो समझ लीजिए कि उसके मिटने के दिन बहुत नजदीक आ गया, क्योंकि अध्यात्म सिद्धांत कह रहा है कि रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है और तमोगुण सर्वनाश का कारण होता है। जितने महापापी आप दुनिया में देखते हो ना, या जो प्रसिद्ध हुए हैं, ये घोर तमोगुणी लोग थे। रावण ने क्या ज्ञान कम अर्जित किया था? क्या उपासना क्या ईश्वर की कम की थी उसने? सिद्धियां क्या उसने कम प्राप्त की थी? लेकिन पांच विकार में से अहंकार जब बढ़ गया उसका, तो राक्षस बन गया, नहीं बन गया वो? तो जितना भी इतिहास हम देख लें विश्व का, किसी देश का हो क्या किसी व्यक्ति का हो, वो सीधा सीधा सा सिद्ध कर रहा है कि ये पांच विकार ये मनुष्य के लिए जहर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और सांसारिक तरीके से जो हम जीते हैं, जो चाल हम संसार में सीखते हैं, ये पांच विकार को बढ़ाने की चाल है। इसलिए हर मनुष्य की यहाँ बर्बादी निश्चित ही है जो इसकी नकल करके चल रहा है। होश में यदि आना है तो किसी पूर्ण ऋषि का, किसी पूर्ण गुरु का सानिध्य, या यूं कहिए कि उसका मार्गदर्शन हमको प्राप्त करना ही पड़ेगा, उसका ज्ञान हमको सीखना ही पड़ेगा। वो ज्ञान मेरे अपने बारे में है, समझे? साइंस तो दुनिया का ज्ञान सिखाती है, लेकिन अध्यात्म आपको अपने बारे में ज्ञान सिखाता है। और आप यदि खुद ज्ञानी बन गए तो विश्व के लिए एक आदर्श बन जाते हो, घोर कलयुग में भी आप आदर्श बन जाते हो। ईसा मसीह को आज भी दुनिया याद करती है ना, फिजिकल लाइफ क्या थी उसकी? मोहम्मद साहब को आज भी दुनिया याद करती है ना, फिजिकल लाइफ क्या थी? राम को आज भी दुनिया याद करती है, लेकिन फिजिकल लाइफ क्या थी उसकी? सब कुछ तो त्याग दिया था राम ने। कृष्ण के बारे में भी महाजी कहते थे प्रेमी, कितने राजाओं को उसने ऊपर नीचे किया लेकिन खुद राजगद्दी पे कभी नहीं बैठा। उसके नाना उग्रसेन थे वही गद्दी पे बैठे, खुद राज कभी नहीं किया कृष्ण। तो जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, अवतार हुए हैं, पूर्ण त्यागी हुए, और जितने गुरु देख लो आप जो असली गुरु हुए, नकली गुरु की बात नहीं, नकली गुरु तो उनके तो लाखों रुपए फीस होती है लेक्चर देने की, करोड़ों का बैंक बैलेंस होता है उनका, और करोड़ों की उनकी जो है शिष्यों की संख्या होती है, पहचान ही उनकी, जिसके करोड़ों शिष्यों वो सब नकली गुरु है, उसकी और पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो रियल गुरु हैं, किसी के 100 चेले हुए, किसी के 4 हुए, किसी के 1000 हुए, महाजी के भी देख लो ना आज के युग में, नहीं कितने शिष्य थे, लगभग 900 शिष्य थे उनके। तो ये पूर्ण गुरु के सानिध्य में कोई आए, ये बड़े ऊंचे भाग वाला कोई पहुंचेगा ना, आम व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है वहां पर। लेकिन उनके ज्ञान पर हर कोई चल सकता है, इसलिए गीता सबके लिए है। कृष्ण के काल में, कृष्ण के संपर्क में कितने से लोग आए होंगे, लेकिन कृष्ण से लाभ आज तक लोग उठा रहे हैं, उनकी शक्ल से थोड़ा लाभ उठा रहे हैं, उनके ज्ञान से लाभ उठा रहे हैं। जिसने उनको ज्ञान को सीखा उसने तो लाभ उठाया, और जिसने उनकी शक्ल देके पूजा शुरू कर दी उसकी जिंदगी खत्म हो गई ऐसी माथा टेकते टेकते। तो इसीलिए ये जो आपका बेसिक प्रश्न था कि लोभ, लोभ ही नहीं ये पांच एक साथ हैं, समझे, इक्वली बैड हैं पांचों। अब जब किसी के अंदर क्रोध प्रबल हो जाए तो आप देख लो क्रोध में सारी फैमिली तबाह हो जाती है, किसी में लोभ प्रबल हो जाए तो लोभी तबाह कर दे, किसी में काम प्रबल हो जाए तो काम ही बर्बाद कर देगा। चारों तरफ स्त्री को ही देखता रहेगा, वो कितनी बर्बादी करेगा तो वही जाने, समाज में क्या भ्रष्टाचार पैदा करेगा ये तो वही जाने। ठीक है, हर विकार समाज का मटिया मेट करता है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म इन पांच विकारों से मुक्त होने के लिए है, और ये पांच विकार से मुक्ति केवल अध्यात्म रास्ते पर चलकर हो सकती है, और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए जिस मनुष्य ने सत्पुरुषों के शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, उन शास्त्रों को समझने के लिए सत्संग का श्रवण नहीं किया, और जिसने किसी ऋषि के जीवन को बारीकी से उसका अध्ययन नहीं किया, उसकी आंख कभी नहीं खुल सकती, क्योंकि एग्जाम्पल चाहिए होती है आपके लिए। उस ज्ञान को किसी ने अपने जीवन में उतारा भी है या नहीं उतारा है। इसलिए जो पूर्ण गुरु का जो जीवन होता है वो एक आदर्श जीवन होता है। महाजी कहते थे प्रेमी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो इन्होंने अपने जीवन पर घटाई ना हो। विचार करके तो देखो जो पूर्ण गुरु का क्या डिक्लेरेशन होता है। तो इसलिए बड़े भाग्य से कभी किसी पूर्ण गुरु का शास्त्र, किसी पूर्ण गुरु का जीवन ये जानने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आदमी यदि कभी भी सीखेगा अपने कल्याण की बात तो वहीं से सीखेगा। पास्ट में कोई ऋषियों की कमी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है लोग मिलावट कर देते हैं। राम का असली जीवन क्या था लोगों को पता ही नहीं आज। माँ जी कहते थे देखो ये तो ऋषि ही त्रिकालदर्शी होता वही बता सकता है। माँ जी कहते प्रेमी वो दिन में राजपाट करता था, रात को सरयू नदी के किनारे तप करता था। और एक दिन महाजी के शिष्य वो थे नरेंद्र जिंदल अंबाला में, तो वो महाजी से कहते ना महाजी मुझे राम के दर्शन करा दो। तो महाजी बोले प्रेमी तू राम के दर्शन करना चाहता है, तू राम के बारे में क्या जानता है, कोई एक बात बता। तो नरेंद्र जी सुनाने लगे महाजी को, महाजी जो जब वो जेवर मिले थे सीता के, तब जंगल में, तब लक्ष्मण से पूछा राम ने कि ये जेवर किसके हैं, तो बोले ये तो माता सीता के हैं। तो बोले मैं माता का सीता के जो पैर में पहनती थी वो तो मैं पहचानता हूं, और मैं नहीं पहचानता। तो ये जब बात महाराज जी ने सुनी, अब देखो ऋषि की क्या है, कहाँ पहुंच होती है, हमारी बुद्धि नहीं पहुंचाई जाती। तो बोले प्रेमी, तुमने कभी ये बात नहीं सोची कि लक्ष्मण तो उसका देवर था, क्योंकि इसकी निगाह नीची रहती होगी, चेहरे पे निगाह उसकी नहीं पड़ती होगी, इसलिए चेहरे के जेवर कैसे पहचाने वो, कि गले में क्या पहनती थी वो, कानों में क्या पहनती थी, नीचे की निगाह रहती थी इसलिए पैर के पहचानता था। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा जिस राम की पत्नी थी वो ना चेहरे के जेवर पहचानता है ना पैर के जेवर पहचानता है, उसकी निगाह कहाँ रहती होगी, उसकी निगाह तो शरीर पर रहती थी, ईश्वर से उसकी निगाह तो हटती नहीं थी कभी। तब दंग रह गए नरेंद्र जी, वो तो राम भक्त थे ना, तो ऐसा क्योंकि वो चाहते थे कि महाराज जी तो किसी भी ईश्वर को मानते ही नहीं है, ना राम को मानते हैं ना कृष्ण को मानते हैं, समझे नहीं, ये कोई राम कृष्ण की बातें नहीं करते, तो उनके अंदर डाउट आ गया। हम लोग अंदर किसी विशेष अवतार की पूजा की कल्पना बैठी होती ना, लेकिन सत्पुरुष की क्या स्थिति होती है हम क्या जाने, कृष्ण की भी क्या स्थिति है कोई क्या जाने, ये तो कृष्ण की गीता ही बता रही है कृष्ण की क्या स्थिति थी। कृष्ण खुद ही तो कह रहे हैं अर्जुन को, अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, हृत देश हे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, देखो कृष्ण कह रहे हैं ये। तो कृष्ण की पूजा करने वाले कृष्ण की गीता को कहां समझते हैं, ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। क्योंकि उनकी पूजा आध्यात्मिक पूजा नहीं है, वो माया की पूजा है, वो संसार में सुख चाहते हैं संसार में खुशी चाहते हैं जो है ही नहीं। तो इसीलिए जब तक आप किसी अवतार किसी पूर्ण गुरु का ज्ञान नहीं सीखोगे आपकी बुद्धि कभी नहीं खुलेगी। ये देखा देखी तो आप माथा टेकना सीख सकते हो, प्रसाद चढ़ाना सीख सकते हो, लंगर खाना सीख सकते हो, बस यहीं तक ही सीमित है, या भजन कीर्तन का ही सुनिए, इससे आपके मन के संस्कार जो हैं पांच विकार से मुक्त नहीं करेंगे आपको, वो तो उस ज्ञान को आपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो ऋषि गाइड कर रहा है आपको। और ये तब करोगे आप जब उस विज्ञान को समझोगे, जब पढ़ोगे समता विलास में कि हर सुख दुख में बदल जाता है, तब आपकी बुद्धि को याद आएगा कि अरे जब हर सुख दुख में बदल जाता है मैं सुख कैसे इकट्ठे कर सकता हूं, ज्यादा सुख इकट्ठे किए तो ज्यादा दुख भोगने पड़ेंगे मुझे, सीधी सी बात कर लो, पहले तो सुख इकट्ठे करने में जिंदगी बर्बाद करो फिर दुख भोगने में जिंदगी बर्बाद करो, बर्बादी बर्बादी है। तो इसीलिए यदि मनुष्य जीवन जीना है किसी ने तो वो अध्यात्म पर बेस्ड जीवन चाहिए, अदरवाइज ये वो मनुष्य का जीवन नहीं जी रहा है। और सीधी सी वाणी करिए कि बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो खोई, उसका पशु समान जीवन है, यदि बिगड़ा हुआ और है वो ज्यादा तो राक्षसी जीवन, मनुष्य का जीवन तो वो नहीं जी रहा है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है, पूर्ण भाग से जब हमको एक गुरु का ज्ञान पता लगा है, गुरु का जीवन पता लगा है, उसके जीवन का स्वाद अध्ययन करें जाने बारीकी से, और उसने जो शास्त्र का ज्ञान दिया है शास्त्र की रचना की है उसको ध्यान से पढ़ें उसको सीखें ताकि जीवन सफल हो। ओम ब्रह्म सत्यम।